मनुष्य प्यार करता है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं मेरे घर में भी जो है अपने कुत्तों को अपने बिस्तर में साथ लेकर सोते हैं। घोड़े को प्यार करता है, गाय को प्यार करता है। एक प्राणी गाय ऐसा हमारे जीवन में आ गया है जो हमारे उत्पादन में साथी बन गया है, तो उसको भी उसका भी विकास हो। ये हिंदू मुसलमान ईसाई का सवाल नहीं। और तीसरी चीज, उपकरण ऐसे हो जो मनुष्य की जगह न ले। साइकिल मेरे पैरों की जगह न ले, चश्मा मेरी आंख की जगह न ले। उपकरण ऐसा हो जो मनुष्य की शक्ति को बढ़ाए, मनुष्य की शक्ति का विकास करे। दो किताबें यंत्र विज्ञान वैज्ञानिकों की निकली है, बहुत अच्छी निकली है। एक सूत्र उसमें आखिर में लिखा, उसमें रेंडर अनटू द कंप्यूटर द थिंग्स दैट बिलोंग टू द कंप्यूटर एंड अनटू मैन द थिंग्स दैट बिलोंग टू मैन। यंत्र की मर्यादा में यंत्र को रखो और मनुष्य की मर्यादा में मनुष्य को रखो। यंत्र मनुष्य की जगह न दे, उसको आराम दे, उसको सुख दे, लेकिन मनुष्य की जगह न दे। इतनी शर्त उसने लिखी है। क्यों मित्रों, मनुष्य की जगह किसी भी प्राणी की जगह कभी कोई यंत्र नहीं ले सकेगा। कंप्यूटर है, हिसाब कर लेता है, कविता भी बना लेता है, परीक्षा के पर्चों का जवाब भी दे देता है, लेकिन दो चीजें हैं जो यंत्र में कभी नहीं आ सकती। यंत्र पागल भी नहीं हो सकता और विभूति भी नहीं बन सकता। ल्यूनेटिक और जीनियस कोई यंत्र नहीं बन सकता, उसकी मर्यादा है। इसलिए उपकरण का भी विवेक होगा, ये तीसरी चीज। और चौथी चीज, सृष्टि का शोषण नहीं होगा। ये पृथ्वी वसुंधरा है, सारी चीजें इसमें से निकलती हैं। कोयला, तेल, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, सब इसमें से निकलता है। इन्हें कैपिटल रिसोर्सेस कहते हैं, मूल पूंजी, मूल धन। मनुष्य का जितना मूल धन है वो इसमें से निकलता है, इसका शोषण नहीं होना चाहिए। इस धरती का शोषण नहीं करेंगे, यह संकल्प होना चाहिए। मित्रों, आर्थिक संयोजन में इन चार मर्यादाओं की आवश्यकता है। इन चार मर्यादाओं के भीतर रहकर जो विकास करना है वो विकास धरती का भी होगा, सृष्टि का भी होगा, और मनुष्य का, पशु का, वनस्पति का, सबका विकास साथ साथ होगा। एक के विकास के साथ सबका विकास होगा। ये सबका विकास, इसी को गांधी ने सर्वोदय कहा, सबका साथ साथ विकास। तो ये चीजें हैं जो आर्थिक क्षेत्र में मैंने संकेत के रूप में कही है। मैं संकेत का रूप इतना इसलिए कह रहा हूं, इतनी लंबी बात करने के बाद भी पूरी बात नहीं कह सका हूं। थोड़े में कहता तो आपकी समझ में नहीं आती मेरी बात, आप कहते कि वो अटपटी बात कह गया। तो आज तीन बातों का आज तक विचार हुआ। एक तो समाज का स्वरूप क्या होगा, राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा, वो विश्व का छोटा प्रतिरूप बनेगा। तो वो क्या बनेगा, कम्यून होगा, किबिट्स होगा कि परिवार होगा। तो दो भाषणों में मैंने आपसे यह कहा कि परिवार होगा। आज के भाषण में उसका हाउस कीपिंग, उसका जो खर्च चलेगा, व्यवस्था जो होगी उसकी पोषण की, वो किस प्रकार की होगी, इसका कुछ संकेत दिया। तो तीन चीजें हो गई। कौन सी तीन चीजें? भारतीयता, राष्ट्रीयता, दूसरा समाजवाद, दो चीजें। और अब तीन चीजें, दो चीजें रह गई, एक सेक्युलरिज्म, एक और दूसरा लोकतंत्र। तो इन दो चीजों का विचार हम कल कर लेंगे। आप सब लोगों को धन्यवाद है, नमस्कार। विचार करना है, एक सेक्युलरिज्म और दूसरा लोकतंत्र। सेक्युलरिज्म के लिए हमारी भाषाओं में अब तक कोई अच्छा शब्द नहीं मिला है। कुछ शब्द ऐसे, कुछ चीजें हैं, कुछ कल्पनाएं ऐसी होती हैं जो नई होती हैं। म्युनिसिपैलिटी के लिए शब्द बना लिए, पार्लियामेंट के लिए बना लिया, सेक्युलरिज्म के लिए अब तक मिला नहीं है। ये चीजें थी नहीं कभी, इसलिए उनके लिए शब्द नहीं है। संस्कृत भाषा में आलू के लिए शब्द नहीं है, गुलाब के लिए शब्द नहीं है, मूंगफली के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें नई है। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि यहां का जीवन, इस धरती का जीवन, जब तक हम इस धरती पर हैं उसका ध्यान रखें, यह असली मतलब है। धर्म का संबंध परलोक से है, मरने के बाद के जीवन से। अध्यात्म का संबंध सत्य आत्मा जो चीजें प्रत्यक्ष हम जानते नहीं है, जिनको उनके साथ है, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष जीवन है यहां का, रोजमर्रा का, इसके साथ इसका संबंध है, उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। लौकिकवाद, यहां के जीवन से संबंधित विचार, इसको साफ करने के लिए एक उदाहरण थोड़ा सा दे दूंगा। अब इस देश में, सारी दुनिया में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी, पारसी, सिख सब हैं, लेकिन सबके लिए केला मीठा है और करेला कड़वा है। मुसलमान का केला कड़वा नहीं होता है और हिंदू का करेला मीठा नहीं होता। शक्कर खारी नहीं होती है किसी की और नमक मीठा नहीं होता। इसे वस्तुनिष्ठा लोग कहते हैं। वस्तुनिष्ठा से मतलब जो प्रत्यक्ष है उसको देखना, समझना और समझ कर चलना। तो अब करेला खरीदने जाए और केला खरीदने जाए, इसमें असल में धर्म का विचार नहीं आना चाहिए। केला केला है, करेला करेला है। इस तरह नागरिकता में धर्म का प्रवेश न हो, यह सेक्युलरिज्म है। नागरिकता में कोई फर्क नहीं। हिंदू की भी एक राय, मुसलमान की भी एक राय, गोरे आदमी के लिए भी एक राय, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भी एक एक राय, एक एक वोट, ये नागरिकता है, इसमें कोई फर्क नहीं। तो नागरिकता में धर्म को न मिला। नागरिकता का आधार जो अपने संप्रदाय को, धर्म को बनाता है, उसे संप्रदायवादी कहते हैं। वो सेक्युलर नहीं है। मेरा धर्म अलग है इसलिए मेरी नागरिकता भी भिन्न है, जो कहता है वो संप्रदायवादी है, सेक्युलर नहीं है, लौकिक नहीं है, लोकनिष्ठ नहीं है। यह लोकनिष्ठ इस धरती का विचार नहीं करता है। मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरा राष्ट्र अलग है, इस देश के मुसलमानों ने कहा, यह संप्रदाय है। ईसाइयों ने नहीं कहा, सिखों ने कहा थोड़ा मुसलमानों के बाद, लेकिन यहूदी, ईसाई, पारसी, इंडोमों में से किसी ने नहीं कहा। कुछ हिंदू निकले जिन्होंने कहा कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, भारतीयता और हिंदुत्व एक ही है। तो यह मुसलमानों की नकल हुई, उन्होंने जो कहा उसका अनुवाद इन्होंने अपनी भाषा में कर लिया। इस्लामियत कौमियत है उन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। अब इसका ज्यादा विवेचन नहीं करूंगा, दोनों के दावे गलत हैं इतना समझ लीजिए। इसमें से राष्ट्रीयता नहीं पनपेगी। दूसरी चीज, जाति को भी उसमें नहीं मिलना चाहिए नागरिकता में। सबके अछूत और ब्राह्मण, भंगी और ब्राह्मण दोनों के एक एक वोट है। अब इसमें ब्राह्मण अपनी जाति को मिलाए, राजपूत अपनी जाति को मिलाए, तो फिर वो नागरिकता नागरिकता नहीं रहती है, वो भ्रष्ट हो जाती है, खंडित हो जाती है। वो आदमी फिर सेक्युलर नहीं रहता है। जाति संप्रदाय की चीज है, धर्म की चीज है, उसको इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। जाति के आधार पर कोई अधिकार न मांगे नागरिकता का, और दूसरे अधिकार। अपवाद किसका है? जिसको कोई अधिकारी समाज में नहीं, अछूत है, आदिवासी। इन लोगों को कभी समाज में जगह नहीं मिली। नागरिकता का अधिकार दे दिया गया कागज पर, लेकिन जीवन में ये कभी समाज में शामिल ही नहीं हो सके। इसलिए इनकी अस्मिता, आइडेंटिटी अंग्रेजी में कहते हैं, अस्मिता अपनापन, समाज में कहीं प्रकट नहीं हुआ। तो इनके अपनेपन को हमें जगह देनी चाहिए, गुंजाइश, उसके लिए अवसर समाज में बनाने चाहिए। तो इनकी मांग जायज है, आवश्यक है, क्योंकि हमको अछूत अछूत नहीं रहने देना है, अछूत को अछूत नहीं रखना है। समाज में उनको दाखिल कर लेना है, ملا لینا ہے, اس لیے ان کی مانگوں کو ہم جائز سمجھتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں. دوسروں کی ساری سامپردائک اور جاتیہ مانگیں غلط ہیں, ان کو جاتی کے آدھار پر اب کوئی ادھیکار نہیں ملنا چاہیے. کب تک ملنے چاہیے تھے؟ جب تک انگریزوں سے پہلے اس دیش میں براہمن اور کھتریوں کے سوا کسی کے کوئی ادھیکار ہی نہیں تھے. براہمنوں کے سوا کوئی پڑھتا نہیں تھا, کھتریوں کے سوا کوئی راج نہیں کر سکتا تھا. یہ حالت جب تک تھی تب تک اور سب کے لیے بھی ریزرویشن آرکشن خاص جگہ رکھنے کی ضرورت تھی. اب وہ ضرورت صرف اچھوتوں کے لیے اور آدی واسیوں کے لیے رہ گئی ہے. کب تک رہے گی؟ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا جا سکتا. یہ تو ہماری سورنوں کی تیاری پر ہے. جس دن وہ ہمارے سماج کے ساتھ ایک روپ ہو جائیں گے, گھل مل جائیں گے, اس دن وہ ختم ہو جائے گی. تو جاتیتا اور سامپردائکتا یہ دونوں سیکولرزم کے خلاف ہیں, لوک نشٹھا لوکتا کے خلاف ہیں. اس دیش میں ہم کو لوک تنتر بنانا ہے, اور لوک تنتر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سارے منشیوں کا مولیہ سمان ہے. مولیہ اور قیمت کا فرق کل میں نے آپ کو بتلایا تھا. ہر منشیہ کا, ادنا سے ادنا منشیہ کا اور بڑے سے بڑے منشیہ کا مولیہ ایک سا ہے. برلا اور اس کا نوکر, پردھان منتری اور اس کا چپراسی, ساس اور بہو, دادا اور پوتا, سب کے ایک ہی ایک ووٹ, اور سب کے ووٹ کا قیمت مولیہ ایک سا. بہت آدھیاتمک وستو ہے یہ لوکتن. سارے منشیوں کا نرخ برابر ایک ساتھ, منشیہ منشیہ میں کوئی فرق نہیں کرتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. خالص انسان جب انسان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو انسان کا مولیہ جتنا شرم وہ کر سکتا ہے اسی پر سے ہوتا ہے. ہریش چندر نے اپنا سارا راج وشوامتر کو دے دیا تو وشوامتر نے کہا کہ دان تو ہو گیا لیکن اس کی سانگتا پریپورتی تب ہوگی جب اس کے اوپر تو دکشنا دے گا. گو دان بھومی دان سب کے بعد دکشنا دینی ہوتی ہے. تو ایک ہزار مورے مجھے دکشنا دے. تو ہریش چندر نے کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ رہ نہیں گیا ہے, راج تو آپ کا ہو گیا, تو یہ میرے جو النکار ہیں شریر پر ان میں سے کسی کو بھی لے لیجیے ایک ہزار مہروں کے بدلے. یہ النکار تو میرے ہو گئے ہیں, تو نے تو سارا دان کر دیا ہے, تو تیرے تارامتی کے روہتاشو کے سب کے النکار میرے ہیں. اب ہریش چندر تیرے پاس ساڑھے تین ہاتھ شریر ایک ہی سمپتی بچی ہے, اور یہ سب سے بڑی سمپتی ہے جس کو کوئی نہیں دے سکتا سوا بھگوان کے. تو یہ ساڑھے تین ہاتھ شریر تیرے پاس ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تم مجبوری کی بات کرتا ہے, लाचारी की भाषा बोलता है, क्यों नहीं इस शरीर का उपयोग करता और मेरे 1000 मोहर मेरी देता। कहा कि ठीक है, अभी शरीर को बेचता हूं, लेकिन कहां बेचूं, सारी पृथ्वी तो आपकी हो गई, आप सार्वभौम राजा हो गए, सम्राट। विश्वामित्र ने कहा काशी में जाओ, काशी में किसी का राज नहीं। हमारे पूर्वजों की एक अनोखी चीज है, अद्भुत चीज है कि काशी पर किसी का राज नहीं। विश्वनाथ की नगरी देवनगर, वहां की भाषा देव भाषा, लिपि देवनागरी, किसी का नगर नहीं। अमरपुरी ईसाइयों की अमरपुरी है, रोम शहर इटैलियन, जहां पोप का शासन चलता है, लेकिन काशी में किसी शंकराचार्य का भी शासन नहीं। विश्वनाथ, विश्वनाथ की नगरी काशी, नरेश भी गंगा के उस पार रामनगर में रहता है, काशी में नहीं रह सकता। इसलिए विश्वामित्र हरिश्चंद्र काशी में गया। पहले तारामती को खड़ा किया बाजार में, तो बोली बोलने लगे लोग, स्त्री का शरीर ही धन है, उसे और किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो तारामती को तो एक धनवान व्यापारी ने खरीद लिया, उसके साथ रोहिताशु, लेकिन 1000 मोहरे तो नहीं मिली। जब हरिश्चंद्र खड़ा हुआ तो हर आदमी उससे आकर पूछता है, हरिश्चंद्र अच्छे तगड़े दिखाई देते हो, सुडौल शरीर है, सुंदर शरीर है, क्या काम जानते हो? कोई काम नहीं जानता, राजा था, राज करना जानता हूं। लोगों ने कहा हमारे पास राज नहीं है, आज के नेता की हालत होती है ना, वो अगर जाए किसी दफ्तर में तो लोग पूछे क्या जानते हो, टाइप राइटिंग नहीं जानता, बुक कीपिंग नहीं जानता, और कोई काम जानते नहीं जानते, तो हो कौन, सिर्फ नेता हूं, नेतागिरी कर सकता हूं, मिनिस्टर बन सकता हूं, तो तुम या तो मिनिस्टर बन सकते हो या भीख मांग सकते हो। उसकी हालत हुई हरिश्चंद्र। आखिर में एक डोम आया, कहा हरिश्चंद्र देखने में तो भला लगता है, कुल्हाड़ी चला, जितनी लकड़ी चीरेगा उतना आटा मैं तुझे दूंगा। रो मित्रों, जब मनुष्य खालिस इंसान के नाते दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है तन्हाई में, तो जितना उत्पादन वो कर सकता है उतना ही उसका मूल्य होता है। अवान्तर सारे मूल्य, दीगर प्रतिष्ठाएं समाप्त हो जाती है। तो यह शान लोकतंत्र की है, खालिस इंसान, कोई विशेषण नहीं, कोई चिप्पी नहीं, लेबल नहीं, खालिस इंसान का इंसान के नाते मूल्य है, और ये आधुनिक चीज है। आधुनिक चीज یہ بال بش کوٹ یہ سب آدھونک, یہ فیشن ہے, یہ چیزیں, یہ آدھونکتا نہیں ہے. آدھونکتا منشیہ کی تلیتا, ہر منشیہ کی سمانتا برابری آدھونکتا. تو یہ لوک تنتر آدھونکتم تنتر ہے, اس میں منشیہ کی شان بڑھ سکتی ہے, اس کا مولیہ سمان ہو سکتا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ نہیں ہوا اس کا کارن کل میں نے آپ کو بتلایا. چیز خریدنے والے کو ملتی ہے, محنت بھی بکتی ہے, ودیا بھی بکتی ہے, گن بھی بکتا ہے, انسان بھی بازار میں کھڑا بکتا. نتیجہ یہ ہے کہ لوک تنتر بھی بکتا ہے. لوک تنتر کا نیلام ہوتا ہے اور اس کا نام لوگوں نے چناؤ رکھا ہے. اصل میں وہ چناؤ نہیں, نیلام ہے. لوک تنتر کا ایک طرح سے نیلام ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ بولی بولتا ہے وہ لوک تنتر کو خرید لیتا ہے. تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے جگہ جگہ, اس کے لیے کیا اپائے؟ اور اپائے میں بتلاتا ہوں, بتلاتے آیا ہوں. 60 سال ہو گئے, کسی نے اس کو آج تک مانا نہیں. استریوں کے لیے بھی, ان کے جیون کے لیے اپائے بتاتا آیا ہوں, اپنی دادی کو بتلایا, ماں کو بتلایا, پتنی کو بتلایا, بہن کو بتلایا, بیٹی کو بتلایا, پوتیوں کو بتلا رہا ہوں, لیکن استری کی طبیعت بدلی نہیں, وہ بدلنا چاہتی نہیں. لیکن بتلانا تو میرا کام ہے, کیا اپائے؟ لوک تنتر کی بکری بند ہونی چاہیے, یہ اپائے. ابھی یہ جو چناؤ ہوئے, اندرا جی جیت گئی, اس میں ایک ودھائک پھل نکلا, اس میں سے بھاو روپ پازیٹو اس کا ایک پھل نکلا. کون سا؟ یہ بات سدھ ہو گئی 1977 میں اور 1980 میں. ایک بات سدھ ہو گئی کہ اس دیش کا ناگرک ووٹر راجیہ کو بنا سکتا ہے, راجیہ کو بگاڑ سکتا ہے. ووٹ کی شکتی, ناگرک کی شکتی دو چناؤں میں سدھ ہو گئی. ناگرک کا آتما پرتیہ پرکٹ ہوا, احساس ہوا اس کو اپنی طاقت کا ان دو چناؤں میں. لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ جتنی پارٹیاں کھڑی تھیں وہ سب ایک دوسرے پر الزام آروپ لگا رہی ہیں کہ اس نے اتنے کروڑ روپے خرچ کیے اور اس نے اتنے کروڑ روپے خرچ کیے. میں تو سن کر دنگ رہ جاتا ہوں. ایک ایک انک سنتا ہوں تو ایسا مانتا ہوں, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان کے تارے گن رہا ہوں. اتنے پیسے کہاں سے آتے ہوں گے, کس کے پاس آتے ہوں گے؟ لیکن وہ آروپ تو ایک دوسرے پر کر رہے ہیں. اب میرے سامنے سوال یہ ہے, میں آپ کو اپائے بتا رہا ہوں. مورار جی کی جگہ اندرا جی آ گئی, اندرا جی کی جگہ اور کوئی آ سکتا ہے, لیکن ناگرک اگر ہوش نہیں سنبھالے گا تو کوئی سمسیا حل ہونے والی نہیں ہے, وہ جہاں کے تہاں رہ جائے گا. اب سرکاریں بدلنے سے کوئی سمسیا حل نہیں ہوگی. جیسے یہ سدھ ہوا کہ ناگرک سرکار بدل سکتا ہے, वैसे यह भी साबित हो गया है कि अब सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। ये तो ऐसा हो गया कि मानो इस देश की सारी जनता विधवा स्त्री है और मुनीम की खोज में है, या स्वयंवर में बैठी हुई राजकन्या है जो वर की खोज में। ये लोकतंत्र है, मुनीम तंत्र है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ। पहले इंदिरा जी को हटा दिया, फिर जनता पार्टी को हटा दिया, लेकिन इस पुरुषार्थ में से क्या निकलेगा? कोई फर्क पड़ा साधारण मनुष्य के जीवन में? एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका है, मार्क्स के जमाने से सवाल है। 1848 में मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकला, उसका अनुवाद किया फ्रांसीसी भाषा में भूमिका मार्क्स के साथी एंगल्स ने लिखी। उसमें वो कहता है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में तो हमको कोई जबरदस्ती करनी नहीं पड़ेगी, क्रांति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्यों? इन देशों में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो बहुमत का राज चलता है, तो जहां गरीब ज्यादा हैं इन देशों में उन्हीं का राज होगा, गरीबों की संख्या ज्यादा है, गरीबों के वोट ज्यादा हैं। क्या वजह है कि गरीब रोता है? क्यों नहीं गरीब का राज होता है? आज तो गरीब के पास दो ही चीजें हैं, शिकायतें और मांगे। राजा ही भिखारी हो गया। जो राजा को बनाता है वही दर दर भटक रहा। यह क्यों हो रहा है? आप अपने से पूछिए, मुझसे यह सवाल पूछा जाता है, मैं अपने से पूछता हूं और आपसे पूछता हूं।